ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तंत्र श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 28वां अध्याय, इसका शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक क्रमण 14। हशे केशो वितुम तत्र पुरु कृच्छ्रोरु वेपथुः। पुरु कृच्छ्रोरु वेपथुः गन्तुम् ऐच्छत् ततो वृक्ष। कोटरादिवसानलात् नशे केशो वितुम तत्र पुरु कृच्छ्रोरु वेपथु गन्तुम् ऐच्छत् ततो वृक्ष। कोटरादिवसानलात् नशे केशो वितुम तत्र पुरु कृच्छ्रोरु वेपथुः गन्तुम् ऐच्छत् ततो वृक्ष। कोटरादिवसानलात् न नहि शेके समर्थ सह वह अवितुम रक्षा करने में तत्र वहां पुरु अत्यधिक कृच्छ्र कठिनाई पुरु बड़ी वेपथुः पीड़ा गंतुम बाहर जाने के लिए ऐच्छत इच्छा की ततः वहाँ से वृक्ष वृक्ष के कोटरात कोटर से इव सदृश स अनलात अग्नि लगे हुए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद जिस प्रकार जंगल में आग लगने पर वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उस वृक्ष को छोड़ना चाहता है, उसी प्रकार वह नगर अधीक्षक सर्प भी अग्नि के प्रचंड ताप के कारण नगरी छोड़ने के लिए इच्छुक हो उठा। तात्पर्य जंगल में आग लगने पर सर्पों के लिए जंगल छोड़ पाना कठिन हो जाता है। अन्य पशु तो अपनी लंबी टांगों के बल से भाग जाते हैं, किंतु बेचारे सर्प रेंग कर चल सकने के कारण प्रायः अग्नि में जल जाते हैं। अंतिम अवस्था में शरीर के अन्य अंग उतने प्रभावित नहीं होते जितना कि प्राण। मम ज्ञानतिमिदमदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे वांच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंध के 28वें अध्याय, इसमें बहुत ही गंभीर परिस्थिति के बारे में चर्चा की जा रही है। ये वो समय है जो हम सबको इस समय के दौरान गुजरना पड़ेगा, वो है मृत्यु के कुछ समय पहले का समय। उस समय जीव को किस प्रकार की परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, कितना कष्ट, और वो कष्ट क्यों आते हैं, और किस प्रकार से जीव अगर चाहे तो अभी जब वो समय नहीं आया तो ऐसा कुछ कर सकता है कि जब वो समय आएगा, जो कि आएगा, तो उस समय पर हमें वो कष्ट ना आए जो कि एक साधारण जीव को आते हैं। इस मुद्दे पर इस अध्याय में चर्चा की गई है। तो जो प्रसंग चल रहा है वो श्रीमान नारद मुनि महाराज प्रचिनी बरहिषद को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप केवल इंद्र तृप्ति में अपना सारा समय मत लगाओ, जीवन मृत्यु की तैयारी में लगाना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं तो बड़ा ही नकारात्मक सोचने की दृष्टि हो गई, हमेशा मृत्यु के लिए तैयारी करते रहेंगे, मृत्यु के बारे में सोचते रहेंगे तो जीते जी मरते रहेंगे हम, कि मृत्यु आएगी आएगी आएगी, पता नहीं कब मर जाएं। ऐसा नहीं है। तैयारी करने का मतलब मृत्यु के बारे में सोचना नहीं, लेकिन इस बात का आभास रहना कि हम कभी भी मर सकते हैं। उसके लिए बुढ़ापा, जो शारीरिक स्तर पर जो बुढ़ापा आता है, उसके लिए भी गुजरने की आवश्यकता नहीं है। और जितने हद तक जीव ने मनुष्य शरीर में इंद्रदीप्ति की है, उतने हद तक मृत्यु के समय से पहले उसको यातना सहनी पड़ेगी। खासकर श्रील गोपाल जी इस अध्याय में के शुरुआत अध्याय के शुरुआत में मैथुन आगार के जीवन से तुलना करते हैं। जितने हद तक एक इंसान ने मैथुन के बारे में क्रिया करना, सोचना, विचार करना, इन सब चीज़ों में समय बिताया है, उतने हद तक उसको ज़्यादा यातना सहनी पड़ेगी मृत्यु से पहले। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए वैदिक समय में हर पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करने पर जोर दिया जाता था कि सारा समय केवल इंद्रिय भोग के बारे में न सोचकर कैसे इंद्रिय संयम के बारे में सोचें, जिससे कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो है कृष्ण प्राप्ति, उसको व्यक्ति प्राप्त कर सके। इंद्रिय संयम श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बतलाते हैं सबसे पहली सीढ़ी है कृष्ण भक्ति की। बिना इंद्रिय संयम किए कृष्ण भक्ति कर पाना बहुत कठिन है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहित चेतसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो दृढ़ता है भक्ति करने के लिए वो आ नहीं पाती, कितना ही हम बाह्य रूप से प्रयास क्यों ना करें, अगर हम भोग और ऐश्वर्य से आसक्त हैं। तो इसलिए इंद्रिय संयम पे शास्त्र बहुत जोर देते हैं। तो मनुष्य शरीर जब हमारे पास है और इंद्रियां अभी उनमें शक्ति है, आंख से दिख रहा है, कान से सुनता है, जीवा से चख सकते हैं, दांत से चबा सकते हैं, तब तक शास्त्र कहते हैं इस शरीर को जिस उद्देश्य के लिए शरीर मिला है उसके लिए इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। ये बुद्धिमता है, इसका प्रशिक्षण हर मनुष्य को चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये संस्था जो हमने इसको तैयार किया है ये इसी उद्देश्य से तैयार किया है कि अगर कोई चाहे कि मनुष्य शरीर जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त हमें दिया गया है उसको उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए एक मौका दिया जा रहा है कि आप ऐसे लोगों के संग में आ सकते हैं जो साथ में आकर एक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों स्कूल कॉलेज होते हैं? लोग चाहें तो घर पे क्यों ना पढ़ाई कर लें, टीचर को घर पे बुलाकर पढ़ाई कर लें, लेकिन स्कूल कॉलेज वो स्थान है जहाँ पर वो सब लोग एक साथ आते हैं जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं। आजकल स्कूल कॉलेज में लोग पढ़ाई करने नहीं जाते, ज़्यादा मौज मस्ती करने जाते हैं, इसलिए वो माहौल स्कूल कॉलेज में भी नहीं मिल पाता। लेकिन उद्देश्य तो ऐसा ही था स्कूल या कॉलेज का निर्माण करने का कि एक प्रवृत्ति के लोग साथ में आए, क्योंकि संघ में कोई भी क्रिया आसानी से हो जाती है, अकेले रहकर वही क्रिया कर पाना उसके लिए दृढ़ता आ पाना मुश्किल हो जाता है। समय के साथ हम कितनी सारी प्रतिज्ञाएं लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन समय के साथ प्रतिज्ञाएं ढीली पड़ जाती हैं। लेकिन ये प्रतिज्ञा जब हम संघ में लें, दो तीन चार लोग मिलके हम सब साथ में कुछ करना करेंगे, करना आसान हो जाता है। तो उसी प्रकार इसलिए शास्त्र में सत्संग पे बहुत जोर दिया जाता है। और रूपा जी बताइए, ये सत्संग को प्रदान करने के लिए हमने ये संस्था का निर्माण किया है, जो कि हमारी संस्था नहीं है, श्री चैतन्य चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण की संस्था है, जिसमें वो सब लोग साथ में आए जो कि एक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। लेकिन तो इस अध्याय में ये वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से जब मृत्यु का समय आता है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपना सारा समय कृष्ण भक्ति में ना लगाकर इंद्र तृप्ति में समय लगाया है तो कितना उसको कष्ट भोगना पड़ता है। और खासकर इस श्लोक में जो हम आज चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है। जिस प्रकार से एक जंगल में जब आग लगती है तो सब जानवर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन जिन जानवरों के पैर हैं वे आसानी से दौड़कर जा सकते हैं, लेकिन सांप जैसे जानवर इनको भाग पाना कठिन होता है, वे उस अग्नि में मर जाते हैं। एक्चुअली यही तुलना भक्ति रसामृत सिंधु में भी एग्जैक्टली यही उपमा दी गई है, लेकिन वो अलग मुद्दे को समझाने के लिए दी गई है। वहाँ पर सांप की तुलना अलग चीज़ से की गई है, लेकिन बिल्कुल यही हमें कल ही एक्चुअली मैं वो भक्ति रसामृत सिंधु की वो एनालॉजी पढ़ रहा था, मैंने कहा अरे भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी ये बात बतलाते हैं, यही उपमा देते हैं अश्विमत भागवत में भी यही उपमा आती है, लेकिन बिल्कुल अलग प्रसंग में आती है। यहाँ पर जो सांप है जंगल में, अलग अलग जानवर और सांप, अलग अलग जानवरों की तुलना की गई है हमारे शरीर के अंग से, स्थूल अंगों से, हमारे हाथ पैर आँख नाक कान, और सांप की तुलना की गई है हमारे सूक्ष्म शरीर से। पिछले श्लोक में बाबा जी इसको स्पष्ट रूप से समझाते हैं अपने तात्पर्य में। ऐसा कैसे कि स्थूल शरीर को इतना कष्ट नहीं होता जितना सूक्ष्म शरीर को होता है? इस तुलना के हिसाब से तो जानवर जिनके पैर हैं वो आसानी से भाग सकते हैं, उनको इतना कष्ट नहीं होता जितना सांप को होता है। सांप जल के मर जाता है, ठीक है, सूक्ष्म शरीर जल के मर जाता है अग्नि में ना, वो बात नहीं बतला रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि मृत्यु के समय से पहले यातना सूक्ष्म शरीर को सहन करनी पड़ती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इन्हीं इसी अध्याय में, कभी कभी स्थूल शरीर को इतना कष्ट आता है कि वो एक तरीके से कोमा में चले जाता है। देखिए ये बात समझना जरूरी है, जब कष्ट आता है किसी को भी, अभी भी अगर कष्ट आता है तो महसूस कौन करता है? ये स्थूल शरीर जो है ये कष्ट महसूस नहीं कर सकता क्योंकि ये जीवित ही नहीं है। स्थूल शरीर मृत है अभी भी, ऐसा नहीं कि मृत्यु के समय पर शरीर मर जाता है, स्थूल शरीर हमेशा ही मृत है। प्रभुपाद जी तुलना करते हैं गाड़ी से, गाड़ी हालांकि चल फिर रही है, उसकी लाइटें जलती हैं, हॉर्न बजता है, इसका मतलब वो जीवित नहीं है, वो मरी हुई ही है, मृत वस्तु है वो। लेकिन ड्राइवर क्योंकि उसके अंदर बैठा है, वो चला रहा है, बटन दबाता है तो हॉर्न बजता है, दूसरा कुछ करता है तो लाइट जलती है, वाइपर चलता है, बहुत कुछ क्रियाएं हो रही हैं गाड़ी में, लेकिन वो केवल ड्राइवर के बैठने से हो रही, गाड़ी में अपने में जान नहीं है, गाड़ी जीवित नहीं है। उसी प्रकार ये शरीर अभी भी मृत है। तो जब कोई कष्ट आता है तो कष्ट महसूस कौन करता है? शरीर? क्या शरीर तो महसूस कर ही नहीं सकता। हम गाड़ी को आप चोटी काटोगे तो गाड़ी को थोड़ा कोई, या पत्थर मारोगे उसको थोड़ा दर्द होता है, उसके अंदर दर्द सहन करने की क्षमता ही नहीं है क्योंकि वो मृत है। जहां आत्मा है, जहां चेतना है, वहां पर सोच विचार करना, भावनाएं प्रकट करना और इच्छाएं करना, ये तीन चीजें तभी होती हैं जहां चेतना है। तो आत्मा के होने के कारण आत्मा उस शरीर को आने वाले तकलीफ को, यातना को महसूस करती है, और वो इसलिए महसूस करती है क्योंकि वो अपने आप को शरीर से संबोधित करती है, वो सोचती कि मैं ये शरीर हूँ। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसा कोई व्यक्ति अगर नई मोटर गाड़ी खरीद कर चला रहा है, नई अभी भी शोरूम से लेकर आया है नई गाड़ी, और लाल सिग्नल पे गाड़ी रुकती है, तो कोई भिखारी आता है भीख मांगने, और उसके शरीर से समझिए कुछ मुँह से कुछ निकल रहा है या कुछ, और आपकी गाड़ी पर जाके गिर जाता है, बोला उसको बोलते हैं हटो हटो तुम क्यों, हमको कष्ट होता है। गाड़ी को गिरता है, उसके मुंह से कुछ निकल रहा है या शरीर में कुछ जख्म है, वो लगता है गाड़ी को, गाड़ी को दर्द नहीं होता, लेकिन हमें वो कष्ट होता है कि ये क्या तुम दूर हटो करके, क्योंकि हम अपने आप को, हमारी आसक्ति है उस गाड़ी से। तो उसी प्रकार जीव की क्योंकि शरीर से आसक्ति होती है, इसलिए जब शरीर को कोई यातना आती है तो जीव महसूस करता है। लेकिन जीव कैसे महसूस करता है? सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। मन बुद्धि और मिथ्य अहंकार के कारण जीव जो शरीर शारीरिक यातनाएं आती हैं उसको महसूस करता है। तो इस श्लोक के अनुसार, आज के श्लोक के अनुसार, शरीर पर आने वाली यातनाएं इतनी शरीर को या इतने मन को या आत्मा को यातना नहीं देती जितनी सूक्ष्म शरीर पर आने वाली यातनाएं हैं। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर बहुत पीड़ित होता है, कई सारे मन में विचार आते हैं कि हमारी पत्नी, प्रभुपाद जी खास का उदाहरण देते हैं, पत्नी और बच्चे के बारे में व्यक्ति विचार करता है कि उनका क्या होगा, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। इसलिए खासकर पापा जी कहते हैं कि वो अपनी पत्नी के बारे में सोचता है कि उसका क्या, बच्चे तो चलो बड़े हो गए, देखभाल कर लेंगे अपनी, मेरी पत्नी का क्या होगा। और क्योंकि पत्नी के बारे में इतना सोचते सोचते वो मरता है, जैसा अध्याय का शीर्षक है, पुरंजन भी अगले जन्म में एक स्त्री बन जाता है। तो साधारणतः हर भौतिकवादी व्यक्ति अगर पुरुष के शरीर में मरता है तो अगले जन्म में उसको स्त्री का शरीर मिलता है, और स्त्री के शरीर में मरता है तो अगले जन्म में पुरुष का शरीर मिलता है। क्योंकि साधारणतः व्यक्ति अपने पति या पत्नी से बहुत आसक्त होता है और उनके बारे में सोचता है, और जिसके बारे में व्यक्ति सोचता है, यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैदि कौन्ते यत् सदा तद्भाव भावित। अगले जन्म में उसको वही शरीर प्राप्त होता है जिस व्यक्ति के बारे में इंसान सोचता रहता है। तो क्योंकि पुरुष अपनी स्त्री अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, अगले जन्म में उसको स्त्री का शरीर मिल जाता है। तो जो परिवर्तन आना चाहिए हमारे शरीर, यानी स्थूल शरीर में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन आना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं तो शुरुआत में स्थूल शरीर में परिवर्तन आता है, केवल कपड़े हमारे बदल जाते हैं। माथे पर अगर कोई लोग तिलक लगाते थे, डॉट लगाते थे ऐसा, या ऐसा तिलक लगाते थे, जैसा भी अगर लगाते थे, तो कई लोग तो लगाते ही नहीं थे कोई तिलक, तो उनके एक प्रकार का तिलक आने लग जाता है। गले में कोई और नेकलेस पहना करते थे, अभी एक कंठी माला आ जाती है। तो शुरुआत में जो परिवर्तन आता है भक्ति में आने के बाद, वो स्थूल शरीर में आता है। हमारे कभी बोल चाल में थोड़ा अंतर आ जाता है, वस्त्र में अंतर आता है, लेकिन एक्चुअली अंतर जहाँ आना चाहिए, जहाँ परिवर्तन आना चाहिए, वो है सूक्ष्म शरीर में। भक्ति एक बहुत गहरा मार्ग है, उसको हम बाह्य रूप से अगर प्रैक्टिस करें, उसको अनुशीलन करें, तो केवल शारीरिक स्तर पे अंतर आएगा। और शारीरिक स्तर पे अंतर आने से फिर उस व्यक्ति को भी वो यातना सहन करनी पड़ेगी जो कि एक भौतिकवादी व्यक्ति को सहन करनी पड़ती थी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में कोई परिवर्तन नहीं है। सोच विचार में परिवर्तन आना चाहिए, भावनाओं में परिवर्तन आना चाहिए। जैसा कि जब विदुर जी को धुतकारा गया दुर्योधन द्वारा कि तुम तो दासी पुत्र हो, तुम्हें क्या हक बनता है मेरे को बताने का क्या सही है क्या गलत, निकल जाओ भाई यहाँ से, इस राज्य से, मैं यहाँ का राजा हूँ, अभी तुम इस शरीर को लेकर तुरंत निकल जाओ, बस अपनी सांसों को लेकर अभी निकल जाओ, बहुत ही कटु शब्द बोले। एक भौतिकवादी व्यक्ति को जब कटु शब्द बोले जाते हैं तो मन में तुरंत क्या भाव आता है, क्रोध, विद्रोह। यहां पर परिवर्तन आना चाहिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं। तो विदुर जी क्योंकि भक्त थे, उनको लगा ये तो बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं दुर्योधन, तुरंत मेरे को यहां से निकल जाना चाहिए। ये सोचते हुए कि ये व्यक्ति अगर मैं यहां खड़ा रहूंगा, निंदा करता रहेगा मेरी, जिसको सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी होंगे, क्योंकि मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे भक्त के प्रति अगर कोई अपराध करता है, उसको देखकर भगवान को कितना कष्ट होगा, उस कष्ट को के बारे में सोचते हुए, देखिए सोच विचार कितना अलग था। विदुर जी वहां से चले गए और तीर्थ स्थान पर निकल गए, ये नहीं सोचा कि अच्छा तुम मेरे को बोल रहे हो, अभी देखो मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और जैसा कि भौतिकवादी व्यक्ति के मन में भले वो कुछ बोले ना बोले, मन में तो क्रोध आता है। मन में क्या विचार आता है जब हमें कोई निंदा करता है, वो चेक है, वो हमें उसको चेक करना है कि हम उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कितनी भक्ति एक्चुअली कर रहे हैं, या भक्ति करने से कितना परिवर्तन आया है। खासकर जब योग तुल्य निंदा स्तुति मौनी, इसलिए भगवद गीता में भक्त के लक्षणों में बताया गया है कि निंदा या स्तुति दोनों में तुल्य बराबर है। हमारी जब स्तुति की जाती है तो मन में लड्डू फूटते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति मेरे को पहचाना है, कि इसको समझ में आया कि मैं हूं कौन। और जो निंदा करता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, वो उसके प्रति हमारे अंदर खराब भाव आ जाता है, भले वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन उसने मेरी निंदा करी इसलिए वो बुरा है, और जो मेरा गुणगान करे वो अच्छा है। अभी कल ही मैं एक व्यक्ति से फोन पे चर्चा कर रहा था, तो बता रहा था कि मेरे को मेरा बॉस नौकरी से निकाल रहा है। हमने कहा क्यों? क्योंकि बॉस ने बोला कि तुम कितने अच्छा नौकरी क्यों ना कर लो, लेकिन जब मैं इंद्र तृप्ति करने जाता हूँ तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, और मेरी इंद्र तृप्ति में तुम भाग लोगे तो तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुमको इस कंपनी में रखूंगा, और तुम अगर मेरी इंद्र तृप्ति में भाग नहीं लोगे, तुम कितनी अच्छी नौकरी क्यों ना करो, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और ये व्यक्ति भक्त है, कृष्ण भक्ति कर रहा है, इसका बॉस जो है वो कृष्ण भक्त नहीं है, और उसको बॉस को घूमने को चाहिए, मौज मस्ती करने को चाहिए, मांस मच्छी खाने को चाहिए। वो चाहता है कि ये मेरा कंपनी में जो काम करने वाला व्यक्ति है वो मेरे साथ सब इंद्र तृप्ति में भाग ले, और नहीं लेगा तो मैं वो बोला निकाल दूंगा मैं तुम्हें कंपनी से। तो ये भक्त मुझसे पूछा, बाबू जी क्या करूँ, मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूँ, मैं नौकरी करनी भी है मुझे, लेकिन अभी वो ऐसा बोल रहा है बॉस। तो दुनिया ऐसी ही है, जो मेरे को इंद्र तृप्ति में मदद करता है वो मेरा मित्र, जो इंद्र तृप्ति में बाधा डालता है वो दुश्मन। तो ये सोच विचार में परिवर्तन आना चाहिए। मेरा मित्र कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, लेट माई ग्रेटेस्ट क्रिटिक बी माई नेक्स्ट डोर नेबर, यानी जो मेरी सबसे ज्यादा निंदा करता है वो मेरा पड़ोसी होना चाहिए। हम कभी ऐसा नहीं सोचेंगे, जो मेरी निंदा करता है उससे दूर रहे, हम उससे दूर रहें, हम ऐसा सोचते हैं। सोच विचार में परिवर्तन को देखिए, अंतर देखिए, भक्त कैसा सोचता है और एक अभक्त कैसा सोचता है। भक्त की भावनाएं कैसी आती हैं जब उसकी निंदा हो। निंदा में एक उदाहरण दे रहा हूं निंदा का, जैसे अभी पांडवों को कितना कष्ट रहना पड़ा, यहां तक कि कभी कभी भीम युधिष्ठिर महाराज को बोलते थे कि तुमने इतना धर्म का परायणता से पालन किया, तुम्हें क्या मिला 14 साल का वनवास, और देखो उस दुर्योधन को, उसने कोई धर्म का पालन नहीं किया लेकिन आराम से वो तो ऐशो आराम से अपने राज्य में बैठा है, राज्य कर रहा है, क्या फायदा है ऐसा धर्म परायणता का। लेकिन युधिष्ठिर महाराज, बहुत सुंदर महाभारत में चर्चा आती है, कई बार द्रौपदी भी इस प्रकार से पांडवों को बोलती थी कि क्यों, क्या फायदा है ऐसा, चलो अभी चलो आक्रमण करते कौरवों को मार दो। भीम तो, क्योंकि भीम के पास शक्ति थी, वो अकेले काफी थे सारे कौरवों को खत्म करने के लिए। कभी कभी उनको अचानक से बैठे बैठे क्रोध आ जाता था ये सोचकर कि क्या कर रहे हैं हम लोग, इतना सत्यता का धर्म का पालन कर रहे लेकिन क्या आ रहा है हमारे साथ। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी विचलित नहीं हुए, उनके मन में कभी विचार नहीं कि क्या फायदा है ऐसा धर्म का पालन। हम लोग सोचते हैं भक्ति करेंगे तो सब अच्छा होना चाहिए हमारे साथ, बल्कि हम इसीलिए भक्ति करने आए हैं कि जो कुछ कष्ट या पीड़ाएं थी अभी वो खत्म हो जाएंगी और जीवन आराम से चलेगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बल्कि अधिकतर तो ऐसा देखा जाता है जो व्यक्ति जितनी गंभीरता से भक्ति को लेता है उतने उसके जीवन में यातनाएं ज्यादा आती हैं। कल ही हम एक परिवार से चर्चा कर रहे थे, वो भी इसी प्रकार से बतला रहे थे कि हमारे जीवन जब से हमने भक्ति को प्रारंभ किया है हम देख रहे हैं हमारे पीड़ाएं शरीर हमारे परिवार में बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक पीड़ा, एक के बाद एक पीड़ा, क्या फायदा है कृष्ण भक्ति के। मैंने कहा यही तो कृष्ण का प्रेम है आपके प्रति, क्योंकि अब वो चाहते हैं, अब वो आप उनके इतने प्रिय बन गए, वो चाहते हैं जल्दी आप उनके पास आए, तो आपको कई जन्मों का जो आपको कर्म भोगने थे इसी में खत्म करके आपको बुलाना चाहते हैं, और जितने आ रहे हैं आपके पास ये भी जितना आना चाहिए थे उससे बहुत कम आ रहे हैं, तो आपके कोटे को भी कम कर दिया, लेकिन इतना सारा कोटा था तो कम करने के बाद भी बहुत है, तो फिर थोड़ा सा जितना हो सके वो भक्तों के संग में रहते रहते वो भी अब थोड़ा कम हो जाता है करके, जो थोड़ा बहुत आ रहा है वो बहुत ही थोड़ा आ रहा है। इसको विचार करे कोई भक्त कि जो मेरे को कष्ट आ रहा है एक्चुअली जितना आना था उससे कम आएगा। देखिए उदाहरण देता हूँ मैं आपको, समझिए 10 लोगों को लाइन में खड़ा किया गया है, अब बोला गया आप सबको 100 100 कोड़े मारे जाएंगे। पहले व्यक्ति को 100 कोड़े मारे जाते हैं, बहुत कष्ट होता है। दूसरे व्यक्ति के बोलते हैं आपको 10 कोड़े मारे जाएंगे, अब उसके मन में क्या भाव आएगा? बहुत अच्छा, केवल 10 ही कोड़े मारे जा रहे हैं मेरे को, तो मारो, दर्द होगा 10 कोड़े पड़ेंगे दर्द होगा, लेकिन इस बात की खुशी होगी कि 100 पड़ते मेरे आगे वाले को तो 100 पड़े, मेरे को तो केवल 10 में छुट्टी मिल गई। अभी कोड़े पड़ रहे हैं लेकिन वो सुखी है, केवल मन की बात है, क्योंकि पिछले वाले सबको 100 पढ़ने थे, अभी केवल 10 पढ़े तो करके खुश है, कोड़े पड़ रहे हैं। और किसी व्यक्ति को नहीं पता उसको 100 पढ़ने थे, उसको बोला इधर आओ तुम्हें कोड़ा मारा जाएगा, वो क्यों मारेगा मेरे को कोड़ा, वो भागे भागेगा वहां से, उसको नहीं चाहिए, वो एक भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता नहीं जो कितने पढ़ने थे, पढ़ के केवल एक पढ़ा है। तो उसी प्रकार कृष्ण भक्ति जो करते हैं, तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष मारो मुंझान एव आत्मकृतम विपाकम हित वाक वपुर भी विदधम नमस्ते। एक भक्त ये समझते हैं, उनके अंदर ये अंदर से ये परिवर्तन आया है कि जब भी कष्ट आता है वो सोचता है अरे इतना ही कष्ट भगवान दे रहे हैं, कितने कृपालु हैं भगवान, जितना मुझे पता ही नहीं मैंने पूर्व जन्मों में कितने पाप किए होंगे, लेकिन फिर भी इतने सारे पाप करने के बावजूद भी इतना सा कष्ट, कुछ भी कष्ट आए वो एक्चुअली बहुत कम है उसके मुकाबले जो आना था अगर हम कृष्ण भक्ति के मार्ग में नहीं आते तो। इस बात को हमें निश्चित रूप से मन में बैठा लेना चाहिए। अब कितना कम आ रहा है वो डिपेंड करता है हम कितना भक्ति में शरणागति ले रहे हैं। तो यातनाएं तो कम आ रही हैं, लेकिन उस कम यातनाओं को हम ऐसा सोचें जैसा अभी हमने चर्चा की, तो उस यातनाओं के आते समय भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। तो दुख कितना यातनाएं आएंगी उसको हम नहीं रोक सकते, जो आएंगी आएंगी, परिवर्तन भक्ति से आना चाहिए सोच विचार में। तो केवल बाह्य परिवर्तन से बात नहीं बनेगी, हमें भक्ति को गंभीरता, तो वो अंदर का परिवर्तन कैसे आए, हमारे सोच विचार में कैसे परिवर्तन आए, उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने देखिए प्रभुपाद जी कितने एक्सपर्टीज कितने दक्षता के साथ उन्होंने ये हमें भक्ति का मार्ग समझाया, और उसमें सुबह और शाम रोज प्रवचन सुनने को बोला। ये प्रवचन सुनना ध्यान से, इस भाव से कि ये प्रवचन मेरे लिए बोला जा रहा है, ये इसमें मेरा लाभ है अगर मैं इसको गंभीरता से लूंगा तो जितने हम ध्यान से प्रवचन को सुनकर उस पर चिंतन करते हैं उतने हद तक हमारे सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन आएगा, और सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन आने के साथ ही जो मृत्यु के समय जो यातनाएं आती हैं उससे हम बच सकते हैं। शुद्ध भक्त जो हमेशा कृष्ण पर निर्भर है, हर परिस्थिति को कृष्ण की व्यवस्था देखता है, उसको मृत्यु के समय कष्ट आता ही नहीं, बड़े ही आसानी से उसका जैसा जीवन चल रहा था वैसे मृत्यु का समय आकर वो शरीर छोड़कर चले जाएगा। उसको पता है केवल मैं इस वस्त्र को बदलने जा रहा हूँ, वो इस शरीर को वस्त्र जैसा देख सकता है क्योंकि उसके सोच में परिवर्तन आया है, उसके साक्षात्कारों में परिवर्तन आया है, उसकी आसक्तियाँ भौतिक होने के बजाय आध्यात्मिक हो गई, उसको कृष्ण सेवा के लिए तत्परता है, ना कि मुझे इंद्र तृप्ति कहाँ मिलेगी। हम तो सेवा में भी इंद्र तृप्ति ढूंढते हैं, ऐसी सेवा करना चाहते हैं जिसमें हमें अच्छा लगे, हमारे अहंकार को अच्छा लगे। अगर किसी बड़े प्रचारक को बोले कि आओ थोड़ा टॉयलेट साफ करना है, ये थोड़ा झाड़ू लगाना है, बोले ये कोई मेरी सेवा है, तुम एक प्रचारक को ये सेवा में लगा रहे हो। भले ऐसा ना बोले, मन में कभी कभी ऐसा विचार आता है, हम सोचते हैं कि प्रचारक की सेवा एक ऊँची सेवा है और झाड़ू पोंछा लगाने की सेवा एक छोटी सेवा है। ये दिखाता है कि हमें भक्ति में परिपक्वता भी नहीं आई है, जो सेवा में भेदभाव कर रहे हैं कि प्रवचन देना मेरी सेवा है ना कि झाड़ू पोंछा लगाना। तो असली परिवर्तन अंदर का आना चाहिए, बाहर से ऊंची सेवा छोटी सेवा का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं, बाहर से दिखता है ऐसा कि एक सेवा में, क्योंकि एक सेवा में मान सम्मान मिलता है, दूसरी सेवा में कोई मान सम्मान नहीं मिलता। तो हम यानी सेवा मान सम्मान के लिए कर रहे हैं, ना कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। फिर अब भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचे तो सब सेवा के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं भगवान को, बल्कि ऐसी सेवा जिसमें मान सम्मान ना मिले, दूसरे लोग हमें ना देखें सेवा करते हुए, उसमें ज्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर हम ऐसा सोचें, देखिए सोच में ही परिवर्तन है, तो हम उन सेवाओं को करने में ज़्यादा तत्पर होंगे जिसमें लोग हमें ना देखें। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान धाम जाने के लिए इच्छा केवल इसलिए करता है कि शरीर से सेवा करने में रोक टोक आता है, शरीर में कई सारी बीमारियां आ जाती हैं जिसके कारण शरीर वो सेवा नहीं कर पाता जो भक्त करना चाहता। भक्त के अंदर बहुत उत्साह होता है सेवा करने का, लेकिन शरीर उस उत्साह के प्रोपोर्शन में उतनी सेवा नहीं करने देता। इसलिए भक्त केवल शरीर को छोड़कर उस शरीर में जाना चाहता है जो सच्चिदानंद शरीर है, जिसमें वो अनंत काल तक और जितनी सेवा हो सके और जितनी सेवा जरूरत है भगवान को उसके द्वारा वो कर सकता है। केवल इस कारण से भक्त भगवान धाम जाना, नहीं तो भगवान धाम जाने का उसका कोई आकर्षण नहीं कि भगवान के साथ रहूंगा, पर्सनली भगवान की पर्सनल सेवा करूंगा, ऐसा भक्त नहीं। ये सेवा में भेदभाव नहीं करता। उसको अगर नरक लोक में भेजा जाए सेवा करने के लिए, मृत्यु लोक में भेजा जाए, वैकुंठ लोक में भेजा जाए, गोलोक वृंदावन में भेजा जाए, एक बराबर है उसके लिए। कीट जन्म हो जथा तुआ दास, मुझे इसके परवानी कौन सा शरीर भी दें आप, मुझे आपकी सेवा करनी है। और कौन सी सेवा? जो आपकी इच्छा हो, उसमें भी कोई वो रखना कि नहीं मेरे को तो ये वाली सेवा करनी है, ये वो सेवा इतना नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं मेरे को। अभी हमारे स्तर पे हम अपने साइकोफिजिकल नेचर, हमारे गुणों के प्रभाव से कुछ सेवा में पसंद आती, कुछ सेवा पसंद नहीं आती। ये पसंद ना पसंद गुणों का प्रभाव होता है। तो क्योंकि अभी हम इन तीन गुणों के प्रभाव में भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हमारी पसंद ना पसंद आती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे, इन गुणों का प्रभाव हम पे कम होगा, फिर ये पसंद ना पसंद का बात रहेगी नहीं। जो सेवा दें आप, हम तत्पर हैं सेवा करने के लिए, क्योंकि सेवा के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। तो ये अंदर में सोच विचार में परिवर्तन आना है, ये जरूरी है। मैं देखता हूँ कभी कभी भक्तों से मिलता हूँ, बहुत साल से भक्ति कर रहे हैं वो, लेकिन थोड़ा भी कुछ जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसा होता है जो उनकी इच्छा नहीं थी, तुरंत उनका मन में ऐसा आ जाता है कि क्या फ़ायदा फिर इतनी भक्ति करने का, इतने साल से हम नाम जाप कर रहे थे, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब कुछ ऐसा कुछ होता है जो आप अपेक्षा नहीं कर रहे थे, अच्छी चीज़ वो होती है आपके साथ, तब ये नहीं व्यक्ति पूछता कि मेरे साथ ये अच्छा क्यों हुआ, तब तो हम उस अच्छे को भोग करते हैं। जो हमने अपेक्षा नहीं की थी वह भी वो अच्छा हो गया। ऐसा कुछ अगर हुआ, अब आप मंदिर में गए, आप किसी ने अचानक आपके गले में ऐसे आके पुजारी ने आके माला डाल दी, आपने अपेक्षा नहीं करी थी, तब नहीं पूछते थे ऐसा क्यों हुआ, क्यों पुजारी ने माला, दुखी होते हैं फिर, नहीं दुखी होते हैं। लेकिन जब दुख की अपेक्षा नहीं करते, वो दुख आता है तो हम दुखी होते हैं, ये क्योंकि हमारी अपेक्षा है कि जीवन हमारे साथ चलना चाहिए, हम यहाँ के स्वामी हैं, ये नहीं सोचते कि हम भगवान के हाथ में कठपुतली हैं। ये बनना चाहते हैं कम से कम, भगवान आप जैसे मुझे नचाना चाहो वैसे नचाओ, ये बोलना आसान है, सोच समझ के मैं बोलना चाहिए ऐसा बातें। भक्त तो बड़े आसानी से जाके प्रार्थना करते हैं, भगवान त्रिनाथ अपी सुनी चेना तरो रिवा सही सुना हमानी न मा देना कीर्तनी सदा हरी, तैयार हो जाओ, आपने प्रार्थना कर दी, भगवान ने सुन भी ली, अब भगवान नम्र कैसे बनाना है आपको, उसके लिए यातनाओं की श्रृंखला आएगी आपके जीवन में। और आप फिर बोलते भगवान ने क्यों यातना दे रहे हैं, भगवान बोला तुमने तो अभी प्रार्थना की थी कि मुझे नम्र बनाए आप, मुझे कृष्ण भक्त बनना है। कृष्ण भक्त बनना मतलब क्या? कृष्ण भक्त मतलब हमारे आचार्यों का जीवन आप देखिए, कितना तकलीफ, कितना कष्ट, आसानी से जो भक्ति नहीं करता और इंद्रदीप का जीवन जीता है, माया उसके ज्यादा परेशान नहीं करती उसको, वो ऐसे तो मेरी गोद में तुम लेटे हो तो लेटे रहो। जो बाहर निकलने का प्रयास करता है माया के जंगल से, माया उसको एक चुनौती जैसा देखती है, उसके जीवन में माया ज्यादा तकलीफ डालती है। तो भक्त बनने का मतलब तकलीफों को न्योता देना कि आओ तकलीफ मुझे आक्रमण करो। तो हमें तैयार रहना चाहिए, अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम भक्त बनना है, भक्ति करना चाहते हैं हम। भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर बोलते हैं कि भक्तों का जीवन कांटों के बिस्तर पर चलने के समान है, तो तैयार हो जाइए फिर आप। तो हम यहाँ पर तकलीफों को खत्म करने के लिए हम नहीं आए हैं, हाँ तकलीफों को बढ़ाने के लिए भी नहीं आए, लेकिन हम सेवा करने आए हैं। और सेवा के दौरान तकलीफ आए चाहे आराम आए, हमें से मतलब नहीं। ये सोच विचार आना चाहिए, साक्षात्कार हमें आना चाहिए। और कैसे आएगा? इसी प्रकार से हम रेगुलरली भागवत कथा, गीता कथा में भाग लें, भक्तों के संग में। इस भाव से भगवान आप बताएं आज इस प्रवचन के माध्यम से मुझे क्या, कैसे भक्ति में और अच्छा भक्त बनना है। इस प्रकार की जिज्ञासा हृदय में रख के अगर हम भक्तों के संग में कथा श्रवण करने आते हैं तो कोई भी प्रवचन करता क्यों ना हो, भगवान उसके माध्यम से हमें वो बतलाएंगे कि हमें किस स्थान पे भक्ति में अपने आप को इम्प्रूव करना है, अच्छा बनाना है। प्रवचनकर्ता केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें भगवान बतलाते हैं हमें भक्ति में क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन वो डिपेंड करता है वापस हमारे भाव पे, हम क्या चाहते हैं, हम क्यों आए प्रवचन में। इसलिए आके सभी जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। इस बाह्य कारण से अगर हम आते हैं तो हमारा ज़्यादा लाभ नहीं होगा प्रवचन में आने से, थोड़ी अज्ञात सुकृति बस मिल जाएगी। तो इसलिए आते हैं कभी एक प्रवचन को कि इस प्रवचनकर्ता के प्रवचन में बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट मिलते हैं, नोट करेंगे फिर हम भी प्रवचन में दोहराएंगे तो बस वो पॉइंट ही मिलेंगे, बस अंदर में परिवर्तन नहीं आएगा, सोच विचार में भावनाओं में परिवर्तन नहीं आएगा। असली परिवर्तन है अंदर का परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन आना बहुत आसान है, अब बाह्य परिवर्तन टिकता तभी है जब परिवर्तन अंदर का आता है, हमारे सोच विचार में, हमारे भावनाओं में और हमारी इच्छाओं में। किस प्रकार की इच्छाएं आती हैं हमें, जब किसी इंद्र तृप्ति के भोग की वस्तु को देखते हैं किस प्रकार की इच्छाएं मन में आती हैं, उससे हमें मापना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं या जाएं वहीं के वहीं हैं, कुछ हो भी रहा है, मूवमेंट हमारे कृष्णा मूवमेंट में है, तो हमारे अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा, हमें देखना चाहिए, परखना चाहिए। और बहुत आसान है परखना, अभी आप जाएंगे प्रसाद लेने के लिए कोई ए लो चपाती दो डाल देता आपको, या आपको कुछ नहीं चाहिए था फिर भी डाल देता आपकी प्लेट में, अरे हम ना ना कर रहे थे आपके हाथ पे डाल देता गरम गरम खिचड़ी, उस टाइम आपके मन में क्या विचार आता है। भगवान सारे दिन हमको अनुभव कराते रहते हैं, अगर हम अनुभव करना चाहें कि हम भक्ति में कहाँ हैं, अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से। ये कभी कभी आप जाएं प्रसाद में, प्रभु जी आइए बैठिए आपके लिए जगह बनाता है, हम तुरंत खुश हो जाते हैं, उसमें भगवान की योजना नहीं देखते, भगवान का स्मरण नहीं करते कि बहुत अच्छा करके, बस अच्छा खुश होके बैठ जाते खाने के लिए। कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है दोनों ही परिस्थिति में भगवान का स्मरण नहीं आता, भगवान को धन्यवाद नहीं देते हम, दोनों ही परिस्थिति भगवान ने हमारे आयोजन की है, क्योंकि अभी अंदर से उतना परिवर्तन नहीं आया। तो इसलिए हमें सोच विचार अभी आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं चलते, हमको जब इंद्र तृप्ति मिलती खुश हो जाते, नहीं मिलती दुखी हो जाते। भौतिकवादी व्यक्ति भी ऐसा ही है, तो केवल हम में भौतिकवादी व्यक्ति में शरीर का अंतर है, शारीरिक परिवर्तन का अंतर है, बस कपड़े बदल गए, हेयर स्टाइल बदल गया, थोड़ा छोटी मोटी चीज़ें बाहर की चीज़ें बदली हैं बस। तो यहाँ तो तुलना जो की गई है, सांप जो मर जाते हैं उस जंगल की अग्नि में, वो ये सूक्ष्म शरीर से तुलना की, सूक्ष्म शरीर बहुत यातनाएं सहन करता है मृत्यु के समय, बहुत कष्ट आता है। स्थूल शरीर तो इतना कष्ट नहीं, इतना नहीं आता, आता है स्थूल शरीर के स्तर पर भी कष्ट, लेकिन मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, अहंकार के स्तर पे बहुत कष्ट आता है। सारा अहंकार उस समय चकनाचूर हो जाता है, अपने आप को समझते हैं हम क्या हैं, अभी लेटे हुए हैं बिल्कुल निसहाय, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, उसके कारण अहंकार को ठेस पहुंचती है। जब अहंकार को ठेस पहुंचती है तो बहुत दुख होता है, अपने आप को हम बहुत बड़ा व्यक्ति समझे थे जबकि है कुछ नहीं, एक दसवें हजार बाल के तिनके के समान है, लेकिन अपना को समझते बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो मृत्यु के समय सब कुछ हमारा पर्दाफाश होता है। तो इस प्रवचन से, आज के इस तात्पर्य से और इस श्लोक से हमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने मन में डालनी चाहिए कि हमें सूक्ष्म शरीर के परिवर्तन के बारे में सोचना है, उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है। उसके लिए इस प्रकार के सत्संग में भाग लेकर, ध्यान से सुनकर समझकर परखना चाहिए दिन भर में। जब हम अलग अलग लोगों से वार्तालाप करते हैं, कोई अच्छी बातें बोलता है, कोई बुरी बातें, अच्छी बुरी की परिभाषा भी हमारी ऐसी है, अच्छी बातें मतलब उसने ऐसी बातें बोली जो हमारे मिथ्या अहंकार को पसंद आई, अब बुरी बातें मतलब ऐसी बात बोली जब मिथ्या अहंकार को ठेस पहुंचा, नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छी बात वो है जो हमको भगवान से करीब लाए, बुरी बात वो है जो हमको भगवान से दूर ले जाए। जैसे अपराध वो हमको भगवान से दूर ले जाता है। सुनने में कभी कभी अच्छा लगता है जब किसी दूसरे भक्त की निंदा होती है, खासकर उस भक्त की जिसे हम भी ईर्ष्या करते हैं, हमारे सामने कोई उसकी निंदा करता तो हमें बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। इसका मतलब अंदर से परिवर्तन अभी नहीं आया या उतना नहीं आया। इस अंदर के परिवर्तन की याचना करनी, याचना करनी है भगवान से हमें। और जब सत्संग का मौका मिले ध्यान से तो प्रवचन को सुनना है, उस पर सुनने के बाद क्या हम जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, परिवर्तन लाने की इच्छा रखनी है, तब धीरे धीरे अंदर का भी परिवर्तन आएगा। बाहर से परिवर्तन जल्दी से आता है, अंदर के परिवर्तन के लिए समय लगता है। इसलिए भागवत बोलती है कि हमें बहुत समय तक कथा को श्रवण करना पड़ेगा, कई सालों तक, कई साल नहीं, जब तक भगवान धाम नहीं पहुँच जाए। भगवान धाम पहुँच के क्या करेंगे, कथा ही श्रवण करेंगे, वहाँ तो चलती रहेगी कथा, नित्य उत्सवम, वहाँ तो यही चलता रहता है, कथा सुनना, श्रवण करना, चर्चा करना, और अलग अलग सेवाएँ करता, यही ऐसे ही जीवन चलता है। लेकिन इस जीवन में हमें समय निकाल कर रेगुलरली इस प्रकार से कथा में आना चाहिए और उस पर चिंतन करना चाहिए, कैसे अपने जीवन में अंतर से परिवर्तन लाएं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की।